पितामह भीष्म का और युधिष्ठिर जी का संवाद चलता है। युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि दादाजी, ये अध्यात्म अध्यात्म बोलते हैं, ये अध्यात्म ज्ञान क्या है? इस जगत की सृष्टि किससे हुई? स्थावर जंगम ये सब प्राणी किसमें जाकर मिलेंगे? पिता भीष्म ने कहा कि अध्यात्म के विषय में तुमने पूछा तो मैं तुमको अध्यात्म के विषय में बताता हूं। जो अध्यात्म ज्ञान होता है वो आत्मा का उद्धार करने के लिए, इसलिए उसको अध्यात्म बोलते हैं, जिससे आत्मा का उत्थान हो। ये सृष्टि और इसके जितने प्राणी हैं, ये सब के सब प्राणी भगवान से पैदा होते हैं। पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, ये सब भगवान से पैदा होते हैं। और तत्रैव प्रलीयते, और उसी के अंदर ही लीन होते हैं। इसके बाद ये इंद्रियां हैं, ये होता है जैसे स्थूल जगत दिखता है ऐसे ही सूक्ष्म जगत है जो स्थूल जगत का ज्ञान करने वाला होता है। और ये जो बुद्धि होती है ये तरह तरह का संकल्प करती है। बुद्धि जब इंद्रियों के साथ और मन के साथ चलती है तब वो संसार का ज्ञान करती है। और इस बुद्धि के साथ मिलकर के जीवात्मा सुख और दुख का भोक्ता बनता है। गुणों के साथ में बुद्धि मिलती है तब तरह तरह के भाव आते हैं। प्रसन्नता का भाव होता है तब ये बुद्धि सत्वगुण में रमती है। जब बैठे बैठे दुख का भाव आता है तब ये बुद्धि रजोगुण के साथ मिलती है। और जब किसी विषय का स्पष्ट ज्ञान न हो, मोह अंदर पैदा होता हो, जिस विषय में कोई तर्क काम न करो, तब समझो कि हमारी बुद्धि तमोगुण के साथ मिल गई है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनकी आपस में विपरीत विपरीत स्थितियां हैं। बुद्धि और आत्मा ये दोनों अलग अलग भी हैं और एक भी हैं। अलग अलग तो ऐसे हैं जैसे गूलर का फल होता है, उसके भीतर अनेक जंतु रहते हैं पर सब जंतु एक दूसरे से अलग हैं, एक साथ रहते हुए भी अलग हैं। ऐसे ही बुद्धि और आत्मा अलग अलग है। और एक कैसे रहते हैं? जैसे मछली और जल अलग अलग रहते हुए भी एक है। बुद्धि का और आत्मा का दोनों का संबंध है, ये अनादि है। बुद्धि का परमात्मा के सिवा कोई आश्रय नहीं है और बुद्धि ही मन के साथ घनिष्ठ संबंध रखकर इंद्रियों को लेकर संसार में दौड़ती है। युधिष्ठिर, प्राय लोग मन तक आकर रुक जाते हैं, वो मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, पर मन स्वयं बुद्धि के अधीन रहता है। इसलिए आत्म तत्व का ज्ञान करना हो तो उस आत्मा को अपने आप को समझते हुए बुद्धि की सहायता ले और बुद्धि से अलग हो जाए। बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार के भेद कल्पित होते हैं, ये मैं हूं, ये तू है, ये वह है, ये यह है, ये ऐसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये केवल बुद्धि का भ्रमजाल है। जो आदमी इस भ्रमजाल को मिटा लेता है वो बड़े आनंद में रहता है। जैसे कोई आदमी महानदी को पार करे तो नौका होगी तो पार करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता है। परंतु जो जीवन मुक्त बनना चाहता है वो किसी नौका की प्रतीक्षा नहीं करता, वो अपने स्वयं से ही, अपने आप ही इस संसार से पार हो सकता है। जो आदमी जीवों के आवागमन पर, जो पुरुष जीवों के आवागमन पर विचार करके बुद्धि से अलग अपने स्वरूप में स्थित होता है, उसके समान कोई बुद्धिमान नहीं है। न भवति विदुषाम ततो भयम्, यद अविदुषाम सुमहत भयम् भवेत्। मूर्ख आदमी अर्थात विषयी भोगी व्यक्ति जिस प्रकार भयभीत रहता है, महापुरुषों को ऐसा भय कभी नहीं लगता। मूर्ख आदमी हरदम डरता है, मैं मर न जाऊं, मेरा कोई मर न जाए, मेरा धन चला न जाए, ऐसे ऐसे वो डरता रहता है। परंतु ज्ञानी आदमी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसके मन में कभी कोई डर नहीं रहता। देखो, आत्मा के विषय में सुनने के बाद इस आत्मा में स्थित होना चाहिए। यहां भी ध्यान बताते हैं, पर ये निर्गुण निराकार का ध्यान है। कहते हैं कि एकांत में बैठो और इस प्रकार से बैठो कि पहले से ही विचार करें कि हमारी बुद्धि वृत्ति, मन की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्ति विषयों में न जाए। पहले से ही शांत होकर बैठो। शब्दम न विंदित श्रोत्रेण, कहीं कोई शब्द हमारे कान में न पड़े। क्योंकि युधिष्ठिर, कभी कोई प्रिय वचन या आर्त वचन रोने का या हंसने का या कोई ऐसा वचन कान में पड़ता है तो वो हृदय को एकदम उद्वेलित कर देता है। कोई रोने लग जाए तो शब्द के द्वारा हृदय उद्वेलित होता है। तो एकांत में बैठे और बैठने के बाद अपने मन को इतना अंदर ले जाए, अपने आत्मा में स्थित हो जाए कि पास में क्या हो रहा है उसको कुछ भी पता नहीं, कोई शब्द भी नहीं सुनाई दे। और स्पर्शम न विंदेत न वेदयेत, कोई उसका स्पर्श करे तो उसको पता ही न चले। रूपम न चक्षुषा विद्यात्, प्रारंभ में तो नेत्र बंद रहते हैं, लेकिन आगे जाकर नेत्र खोल करके ध्यान किया जाता है। तो उस समय में किसी रूप को न देखा जाए, आंख खुली भी है रूप को न देखा जाए, आंख बंद है तो मन के नेत्र से न देखा जाए। पंचवर्ग प्रमाथिनी नेचे चैतानी शौर्यवान, पांच इंद्रियों के जो विषय हैं ये इंद्रियां स्वयं हैं, ये मत देने वाली होती हैं, बड़े सावधान रहना। पत्ते पर जैसे पानी की बूंद है वो यूं हिलती रहती है पीपल के पत्ते पर, ऐसे ऐसे ये मन के ऊपर इंद्रियां यूं यूं चंचल रहती हैं, विषयों की तरफ दौड़ती रहती है। इसलिए समीहितम क्षणम किंचित, महाराज जी कहते हैं ना कि एक सेकंड भी आप चुप रहो, कुछ भी मत सोचो, वही बात है। समाहितम क्षणम किंचित, एक क्षण भी यदि आप स्थिर रह गए तो आपको बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। पुनर्वायु प्रथम वायु प्रथम भ्रांतम मनो भवति वायुवत, फिर वायु की सहायता से मन चंचल होता ही है, तो डरो मत। अनिर्वेद गत क्लेश है, कोई निर्वेद माने ये क्या हो गया, हम तो ध्यान लगाने बैठते हैं मन देखो उधर चला गया इधर, ऐसा विचार न करे। गत क्लेश गत तंद्री, नींद भी न आए, मात्सर्य का त्याग भी कर दे और पुनः संदध्यात, अभी मन को वापिस वहां ले, बस कुछ नहीं मन चला गया वापिस वहीं ले आओ, फिर चला गया बस वापिस यहां लाओ, और अच्छा हुआ कि बुरा हुआ कुछ मत विचार करो। विचारश्च विवेक विवेकश्च वितर्कश्च उपजायते, जब ध्यान का प्रारंभ होता है तो कई विचार आएंगे, वो भी ध्यान के बारे में ही विचार आएंगे, कुछ विवेक बढ़ेगा, वितर्क आदि पैदा होंगे, एक क्लेश भी आएंगे, उससे साधक को उबना नहीं चाहिए। मिट्टी का कोई ढेला होता है उसके ऊपर थोड़ी मिट्टी डालते हैं, थोड़ा पानी डालते हैं, तब तक वो मिट्टी का ढेला फूटता नहीं है, वो पानी अंदर बैठता है तब वो मिट्टी का ढेला यूं बिखर जाता है। महाराष्ट्र ढालेगांव वगैरह में जाते हैं तो यूं मिट्टी रहती है एकदम लड्डू की पत्थर की तरह, फिर उसमें पानी डाल देते हैं, पानी एकदम चिकनी हो जाती है। ऐसे ही भगवान का ध्यान करते हैं और वो ध्यान अंदर बैठता है तब हमारे जो पाप राशि है तो मिट्टी के समान कोई खास नहीं है, पर बहुत मजबूत हो गई वो, अब ये ध्यान का रस उसमें जाता है, पाप वो खत्म होते हैं, एकदम पाप खत्म हो जाते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, किंचित स्निग्धम और शायद शुष्क चूर्णम अभावितम, सूखा चूर्ण मिट्टी हुई ऐसा गांठ वो रहती है, पानी सनई सनीर गच्छे, जब वो ध्यान जाता है उसमें बिखर जाता है। ऐसे ध्यान करना चाहिए और ध्यान के साथ फिर जप करना चाहिए। निर्गुण निराकार में तो ध्यान होता है और फिर जो है यदि सगुण साकार का ध्यान करे तो जप करे, उसको जप करते हुए उस स्वरूप का दर्शन करे जो स्वरूप उसको प्रिय लगता है। वो जप करने वाला पुरुष इतना जप का आनंद से भाव से जप करता है उसको इंद्रादि देवलोक नरक के समान लगते हैं। संसार के दिखे हुए विषय तो कोई अप्रिय लगे तो कोई खास बात नहीं है। पितामह भीष्म कहते हैं हम तुमको एक बड़ा सुंदर इतिहास सुनाते हैं। इक्ष्वाकु वंश में सूर्य वंश में इक्ष्वाकु नाम के राजा हुए, उनका और ब्राह्मण का संवाद है, ध्यान से सुनिएगा। देखो उस संवाद को कई लोगों ने सुना, काल ने भी सुना, मृत्यु ने भी सुना, यमराज जी ने भी सुना, सब आए थे वहां। शुरू से इतिहास सुनाता हूं पुत्र युधिष्ठिर। एक जप करने वाला ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण पिपलाद का पुत्र था, पिपलाद का पुत्र था, कौशिक वंश में पैदा हुआ था। उसने हिमालय के वहां जाकर कड़ी तपस्या की और फिर संगीताम संयतो जपन और वेद की संगीताओं का खूब जाप किया। उसने हजारों वर्ष उसके जाप करने में लग गए। तब जो है वहां सावित्री स्वयं प्रकट होकर के उसके सामने आई, तब भी वो जप करता रहा, सावित्री से बोला नहीं। जप्यम आवर्तयं स्तुष्णिम नसताम किंचिद अब्रवीत, कुछ भी नहीं बोला तो वो देवी प्रसन्न हो गई। वो सावित्री कह दो गायत्री कह दो एक ही बात, गायत्री बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर जब वो पूरा हो गया तब उसने गायत्री को प्रणाम किया। गायत्री ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारी जप की निष्ठा देखकर बड़ी खुश हो गई, मेरे से वरदान मांग ले। क्या चाहता है बता, कौन सा लोक चाहता है, क्या चाहता है तू? प्रभु ही जपताम श्रेष्ठ सर्वम तत्ते भविष्यति। उसने कहा कि मैं जो जप कर रहा हूं मैं इसी का ही जप चाहता हूं, जप का फल कुछ नहीं चाहता हूं। जप्यम प्रति मम इच्छेयम, मेरी तो इच्छा यह है कि इस जप के प्रति मेरी इच्छा बढ़ती रहे, इस जप में ही मेरी इच्छा बढ़ती रहे, यही इच्छा है। क्या अच्छी बात, तो एकांत में ऐसा ही जप करता रहे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काल है, धर्म है और यमराज है, इनके साथ में तुम्हारा कभी संवाद भी होगा ना, तुम डरोगे नहीं, मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि जप के द्वारा तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। अच्छी बात, सावित्री तो चली गई, वो जप में संलग्न रहा। वो इतने ध्यान से उन मंत्रों का जाप करते थे कि उनके जप में कोई दोष नहीं निकाल सके। तब उनके सामने धर्म आया अपना रूप बना करके, ए ब्राह्मण मेरा नाम धर्म है, तू जप में लगा हुआ है, मैं तुझे जप का फल देने के लिए आया हूं, तूने संपूर्ण लोगों को जीत लिया है, देवता लोगों के लोक को भी जीत लिया है, बोलो तुम क्या चाहते हो, प्राण त्याग कर दो, जप को बंद कर दो, जो तुम जप से चाहो वो सब तुमको देने के लिए तैयार। ब्राह्मण ने कहा कि हे धर्म, आपका ही तो ये धर्म माने जो मुझे करना चाहिए, जप करना चाहिए, मैं आप ही का तो अवलंबन ले आया हूं। आप कहते हो प्राण त्याग दो, क्यों क्यों प्राण त्याग दो, कि तुमने जप कर लिया, अब चाहे जितना सुख मांग लो, मुझे सुख चाहिए ही नहीं, बहु दुख सुखम देहम, मैंने बहुत सुख दुख देख लिए संसार में, कितनी बार मरा हूं, जिया हूं, सुख दुख पाया हूं, अब तो मैं जप में ही लगूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मरने के बाद ये जप का सुख कैसे मिलेगा मुझे। अरे तुझे स्वर्ग में भेजेंगे, क्या तू यहीं पड़ा रहेगा, कि मुझे स्वर्ग चाहिए ही नहीं। अरे रहने दे, मैं धर्म हूं, धर्म। स्वर्ग नहीं चाहिए तो और ऊंचा लोक चाहिए तो, मुझे और ऊंचा भी लोक नहीं चाहिए। अच्छा और ऊंचा लोक यदि आप दे तो मुझे शरीर सहित भेजो ताकि मैं ये जप करता रहूं। मानव जीवन कहां मिलेगा मुझे? मानव शरीर तो नहीं है ना, और जगह है कि नहीं है? तो फिर मानव शरीर में ये जप तप होते हैं, ये वहां होंगे नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो देख, ये यमराज जी मेरे पास में, काल मेरे पास में और मृत्यु मेरे पास में, या तो तू चले ना, ये तेजो मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे, मार देंगे तो मार देंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा। यमराज जी ने कहा, वाह वाह, बहुत हो गया भाई, तू यमराज से भी नहीं डरता? कि नहीं महाराज, आपको तो प्रणाम करता हूं। काल ने कहा कि फिर क्या है, चलो। ऐसे बातचीत हो रही थी, इतने में ही इक्ष्वाकु राजा जाने कहां से घूमते घामते आ गए। भाई राजन, आप कहां से आए? अच्छी बात है, आप भी बैठो। वो राजा भी बैठ गए। ब्राह्मण ने उनका भी सत्कार किया, आओ महाराज। राजा ने कहा, एक मैं क्षत्रिय राजा हूं और आप वो ब्राह्मण, तो मैं तो आपको कुछ देने के लिए आया हूं, दान देना चाहता हूं, दान लेना पड़ेगा आपको। ब्राह्मण ने कहा कि दो प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक कर्मकांडी ब्राह्मण जो यजमान का कर्मकांड करते हैं और ऊपर यजमान उनको अपनी तरफ से इच्छा से कुछ देता है, और एक होते हैं निवृत्त ब्राह्मण जो अपने अंदर से विचार ही छोड़ दिया कि हमें प्रतिग्रह लेना ही नहीं। दो प्रकार के होते हैं। तो मैंने पहले से नियम ले रखा है, मैं प्रतिग्रह नहीं लूंगा। तो जो ब्राह्मण बिचारे प्रवृत्ति मार्ग में उनको दो, मैं तो लूंगा नहीं। आपको क्या चाहिए? आप जो चाहिए वो मेरे से मांगो। आपको क्या अभीष्ट है? किम इष्टम ददामि ते, आप जो मांगो सो देने के लिए तैयार। राजा ने कहा कि ये उल्टी बात कहां से है? क्षत्रिय देने के लिए होता है, क्षत्रिय लेने के लिए नहीं होता है। और लेने के लिए होता है तो वो युद्ध ही लेता है। आज तक किसी क्षत्रिय ने मांगा है तो यही मांगा, आओ मेरे से युद्ध करो, युद्ध मांगा है, वस्तु वगैरह नहीं मांगता क्षत्रिय। ब्राह्मण ने कहा, देखिए तुष्यसी तुम स्वधर्मेण, आप अपने धर्म के अंदर बिल्कुल ठीक हैं, तो मैं मेरे धर्म में ठीक हूं। मेरा तो यही कर्तव्य है कि मैं जो दे सकता हूं वो आप दीजिए। तो राजा ने कहा कि भाई मैं तो अपने शक्ति के अनुसार दान दूंगा, मेरी जो शक्ति है वो मैं दान दूंगा आपको। ब्राह्मण ने कहा कि देखो, आप जो युद्ध की बात बोलते हो ना, कि क्षत्रिय युद्ध की बात कर सकता है, तो युद्ध करना क्या ब्राह्मण का धर्म है क्या? क्या ब्राह्मण से आप युद्ध कर सकते हो क्या? तो क्षत्रिय ने कहा, देखो ये वाग युद्ध हो गया ना आपका और हमारा, ये वाग युद्ध हो गया। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, आपने हमसे कुछ कहा, हमने आपसे कुछ कहा, तो अब बोलिए मैं आपको क्या दे सकता हूं, ये बोलिए आप। तो कहा कि आपने कितने वर्ष तक जप किया है? जितने वर्ष भी किया होगा उसमें 100 वर्ष के जप का आप मुझे पुण्य दे दीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि जो जप किया है उसका उत्तम फल मैं आपको देता हूं, आप ग्रहण करो। देखो आधा फल तो आपकी और मेरी बातचीत हो गई, इसमें ही मिल गया, और बाकी फल मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। राजा ने कहा, ठीक है, आपने कहा मैंने लिया, ये अपना काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूं। अच्छा जब का फल क्या है ये बताओ, आपने क्या इच्छा रख करके जप किया है? उसने कहा कि मैंने फल प्राप्ति के लिए कुछ किया ही नहीं है, मैंने सोचा ही नहीं कि इस जप का ये फल होना चाहिए, फल के ऊपर दृष्टि आपकी गई इसलिए मैंने कह दिया कि जो आप जो फल है वो आप ले, क्या फल है मुझे पता नहीं। अब क्या फल हो सकता है ये धर्मराज बताएंगे, यमराज बताएंगे, मृत्यु बताएगी, काल बताएगा। राजा ने कहा बोलो धर्मराज जी, बोलिए यमराज जी, आपको क्या कहना है। राजा कहने लगे अज्ञातमस्य धर, देखो जब आपको अपने अपने जप का कोई फल आपने मन में नहीं सोचा है तो ये धर्मराज जी क्या बताएंगे, जप आपने किया कि धर्मराज जी ने किया है। फलम ब्रवीषि धर्मस्य नचे जप्य कृतस्य माम, धर्म का अज्ञात फल मेरे क्या काम आएगा, तुमने तो कोई धर्म का फल जाना ही नहीं। क्या देखो मैं अपना फल आपको दे चुका हूं, अब उसमें जो आपको लेना है सो आप ले। इतना लंबा चौड़ा विवाद चला है दोनों में, वो कहता है मैं क्षत्रिय हूं कैसे लेऊं, कि आपने पहले लेने की प्रतिज्ञा कर ली है और फिर आपने देने की प्रतिज्ञा कर ली, ऐसे करके दोनों में बड़ा विवाद चला। ब्राह्मण ने कहा यदि आप स्वीकार नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। उसने कहा कि आप मुझे ये फल बताओगे, फल मैं कैसे बताऊं, फल तो मैं नहीं बता सकता। ऐसे दोनों आपस में खूब वाद विवाद हुआ। उसी समय में दो आदमी आए और आए दोनों एक दूसरे को मुक्का मारे, लड़े झगड़े यूं। वो उसकी जो है वस्त्र पहने हुए जो ये दुपट्टा रहे, वो उसने दुपट्टा खींच लिया, उसने दुपट्टा, लड़े दोनों। उसने कहा कि एक ने कहा कि तेरा मेरे पर ऋण है तुझे लेना पड़ेगा। उसने कहा कि मैं कैसे लेऊं, मेरा कोई ऋण है ही नहीं। कह नहीं तेरा ऋण मेरे अंदर बाकी है, लेना पड़ेगा, मैं ऋणवान होके थोड़ी मरूंगा। ऐसे करके दोनों की लड़ाई हो रही थी। और कहा देख ये राजा रहे हमारे इक्ष्वाकु राजा, इन राजा से निर्णय कराओ। राजा ने दोनों को अलग अलग किया कि भैया लड़ते क्यों आप लोग, आप लोग कोई अच्छे आदमी मालूम देते हो और आप लड़ रहे हो, कोई आश्चर्य हो रहा है कि आप जैसे अच्छे आदमी लड़ते कैसे हैं, क्या बात है। तो एक का नाम था विरूप, एक का नाम था विकृत। विरूप ने कहा देखिए जी हमारी लड़ाई का कारण बताता हूं, ये जो विकृत है ना, उन्होंने एक गाय को, एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दी, गाय को दान में दी। मैंने देखा कितना बढ़िया ये ब्राह्मण है, कितनी बढ़िया इसको गाय दी, गाय को श्रृंगारित करके हृष्ट पुष्ट गाय दी और पयस्विनी, चारों थनों से खूब दूध आए और बछड़े से संपन्न, वह सुंदर बछड़ा गाय। मेरा जी किया कि ओहो ये जो गौदान हुआ है, इस गोदान का कितना बड़ा भारी फल होगा। तो मैं इसके पास आया, विकृत के पास। मैंने कहा कि जी आपने जो ये गोदान किया है इसका फल आप मुझे दे दीजिए। तुमने कहा ले लो, दे दिया। मैंने वो ले लिया। ले लेने के बाद फिर जो है थोड़े दिनों के बाद में मैंने दो गाय ली और दो गाय लेकर के और दो गाय का दान किया, दो गाय का दान किया। तो एक गाय, एक गौदान का फल तो मैं इनको देने के लिए आया हूं और एक गौदान का फल मैं मेरे पास रख रहा हूं। अब बताओ मेरी क्या गलती है, लेना नहीं चाहते हैं। राजा ने कहा भाई ये आपकी गलती है, इन्होंने आपसे जैसे मांगा ऐसे आप भी इनसे लो। भैया हमने तुमको गोदान का फल दिया था, अब आपने भी गोदान कर दिया, आप भी फल दो मेरे को। विकृत ने कहा कि ना साहब मैंने कोई व्यापार थोड़े ही किया है, इसने गोदान का फल मांगा जरूर था, परंतु ये थोड़ी कहा था कि समय आने पर मैं वापिस दे दूंगा, ऐसे नहीं कहा है, इसलिए मैं तो नहीं लिया, चाहे आप कुछ ही करो, फांसी पर लटका दो। कि नहीं, ये तुम्हारा अन्याय है, तुमने एक बार जो है इसको दिया है वो वापिस दे रहा है, आपको ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, खूब बोले। इतने में वो ब्राह्मण बोला कि महाराज, इनके लड़ाई के बीच में आप बोलते तो हो, आप हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो कि आपने मुझसे क्या कहा था कि जब का फल मैं लेना चाहता हूं तो ले। अब आप मुझे कहते हैं कि मैं जप नहीं लूंगा, ऐसे कैसे होगा? शपिष्य, मैं आपको शाप दूंगा, दूसरों को तो आप ऐसा बोलते हो। राजा ने कहा, भाई क्या बताएं, आज तो इन दोनों के विवाद में मैं तो मेरी बात से दब गया। इतने में ही राजा को वो दे दिया जल वगैरह लेकर के, और अपना फल दे दिया, और वो विकृत और वो विरूप दोनों आए थे, वो दोनों अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर के राजा के सामने के, महाराज मेरा नाम काम है, अच्छा तुम्हारा, मेरा नाम क्रोध है, हम दोनों सदा साथ साथ रहते हैं, देखो जो मैंने गोदान की इच्छा की थी, इच्छा करने वाला काम होता है, और नहीं लूंगा, ये क्रोध किया, ये क्रोध है, ये विकृत है, और मैं विरूप काम हूं, हम दोनों ने अपनी इच्छा से रूप बनाया, और इच्छा से रूप बना करके धर्म, मृत्यु, काल, यमराज और राजा और ब्राह्मण, इनके सामने हम ये निर्णय कराना चाहते थे कि जापक का फल क्या होता है और उसका फल कैसे उसको दिया जाता है। ऐसे वहां पर ये बातें हुई, वो फिर जो है वहां ब्राह्मण था, यूं बैठ गया, बहुत सब सभा लग गई, वहां इंद्रादि देवता भी आगे बैठ गए, यूं सांस ऊपर लिया और मस्तिष्क में से सांस निकला और उसका सूक्ष्म शरीर ब्रह्म लोक में गया, तो ब्रह्मा जी ने स्वागत किया। स्वागत करने पर फिर जो है वहां सब लोग देखते रहे, ब्रह्मा जी को भी धन्यवाद दिया, सब लोग आ गए, फिर वहां भगवान विष्णु भी आ गए, पुष्प वर्षा भी हुई, सब लोग कहने लगे कि महाराज आज तो इस जापक ने सबको जीत लिया, कुछ नहीं चाह करके इतना जप किया तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ करके उसका स्वागत किए। इसलिए देखो, भगवान का जप करो, किसी मंत्र का जप करो, लेकिन उसका कुछ भी फल न चाहो, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि महाराज ये आपका ज्ञान तो बड़ा अगाध है, अगाध ज्ञान योग है, इसका तत्व तो बड़े बड़े लोग जानते हैं, आप मुझे सरल भाषा में समझाइए कि ज्ञान योग क्या होता है। तो कहने लगे, एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति जी भी मनु महाराज के पास गए, जो प्रजापतियों में श्रेष्ठ, और उनसे बहुत बातें करने लगे। मनु महाराज से पूछा कि जगत का मूल कारण कौन है और ज्ञान किससे पैदा हुआ है, वेद के मंत्रों के द्वारा किसकी स्तुति गाई जाती है, ऋग्वेद साम संघाश्च यजुंश्चापि, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और ये छंद शास्त्र, निरुक्त शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शिक्षा कल्प, ये सब महाराज कहां से प्रकट हुए हैं, मुझे पता नहीं है, आप हमको बताइए। मनु महाराज कहते हैं, देखो भाई सीधी सीधी बात है, मनुष्य में एक स्वाभाविक आदत होती है, प्रिय की प्राप्ति हो और अपने अनिष्ट की निवृत्ति हो, अप्रिय की निवृत्ति हो, जिसको हम अच्छा मानते हैं वो तो मिले और बुरा मानते हैं वो न मिले, उसके लिए शास्त्र ने कर्म बताया कि ये वैदिक कर्म है, ये कर्म करो, तुम्हारी इच्छित चीज मिलेगी, जिसको नहीं चाहते वो नहीं मिलेगी। परंतु कई पुरुष ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि अच्छा और बुरा मिलेगा और तो बिछुड़ जाएगा वो, कोई बुरी चीज मिलेगी तो सदा तो साथ रहेगी नहीं, अच्छी चीज मिलेगी भी सदा साथ रहेगी नहीं। इसलिए अच्छी बुरी से मतलब नहीं है, हमको तो मोक्ष से मतलब है। तब उसी वेद के अंदर ज्ञान की बातें कही गई है। तो जो कर्म की बात कहे, जो ज्ञान की बात कहे, वो वेद शास्त्र का आधार रहता है। अब मनु ने सब बात बताई, कितने मंत्र हैं, क्या है, त्रिगुणात्मक सृष्टि है वो भगवान से कैसे मिली है, यतो जगत सर्वमिदं प्रसूतम, सारा संसार उन्हीं से पैदा हुआ है। कहते हैं इनको कैसे जाने, कि इनको जानने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। ये संसार के धर्म से निरपेक्ष परमात्म तत्व है, न वो शब्द के द्वारा जाना जाता है, न गंध के द्वारा जाना जाता है, न स्पर्श के द्वारा, न जिह्वा के द्वारा। निवर्त हित्वा, सबकी निवृत्ति के बाद ही उसका ज्ञान होता है। देखो खूब अच्छी तरह से काष्ठ का मंथन करते हैं, आग पैदा होती है और धुआं भी पैदा होता है, पर जो स्थूल दृष्टि वाले होते हैं वो धुआं देखते हैं, वो धुआं उठे धुआं उठे, और जो सूक्ष्म दृष्टि वाले हैं धुआं बिना आग के पैदा हो ही नहीं सकता, तो जरूर अग्नि है, तो वो आग को देखते हैं, मूर्ख आदमी धुएं को देखते हैं। ऐसे ही इस संसार के अंदर वस्तु आदि की सत्ता मानते हैं वो धुएं को देखने वाले, और ये वस्तु आदि किससे पैदा हुआ है वो ज्ञान को देखने, वो आत्मा को देखने वाले, परमात्मा को देखने वाले। देखो भाई, जिस प्रकार से आदमी गहरी नींद में सोता है तो इस शरीर को भूल जाता है, और गहरी नींद में नहीं, स्वप्न अवस्था में एक नया ही शरीर दिखता है, मैं बैठ गई और बैठी हूँ, ये और बैठी हूँ, ये और जागी और जनगर कहीं नहीं है। तो स्वप्न में जैसे एक नया शरीर होता है, वो संकल्प का शरीर होता है, ऐसे ही ये शरीर यहाँ मर जाता है, जिन विचारों में वो रहता उन विचारों के अनुसार उसको मृत्यु के बाद शरीर मिलता है। और ज्ञानी महात्मा कैसे होते हैं, ज्ञानी महात्मा होते हैं जैसे गहरी नींद आती है, कुछ पता नहीं है, सपना अपना नहीं होता है, ऐसे गहरी महात्मा का होता है। देखो जब जल है ना एकदम स्थिर होता है, साफ होता है, तो अपना मुख उसमें दिख जाता है। इसी प्रकार से जब इंद्रियां, मन और ये बुद्धि ये स्थिर होती है, उस समय में अपने आत्मा का बोध होता है, और ये जब विषयों के अंदर चंचल रहती है तब अपना रूप नहीं दिखाई देता, अपना रूप अपन भूल जाते हैं। ज्यादा विषयों का संसर्ग करने से, बहुत अच्छी बात है, विषयेषु च संसर्गात् शाश्वतस्य तु संश्रयात्, हरम निरंतर विषयों के आश्रय में ही पड़ा रहना, इनके बिना काम नहीं चलता, ये बहुत महत्व की चीज है, हरदम इनमें रचे पचे रहते हैं, उनको अपने अंदर विराजमान परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। और विषयों को बार बार संसार में प्रवृत्त होते देखकर, दुख पाते देखकर भी मनुष्य सावधान नहीं होता। अरे कम से कम दुख न पावे, इसलिए तो इंद्रियों को और मन को रोकना चाहिए, उधर भी ध्यान नहीं देते। और विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, इसमें भी आया गीता जी में तो आया ही है, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अंदर तो आसक्ति भरी पड़ी है, ऊपर से विषयों को हमने छोड़ दिया, इंद्रियों से इनका त्याग कर दिया, और यदि रसवर्जम आसक्ति का त्याग नहीं किया, आसक्ति पड़ी रही तो कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है तब वो अंदर से आसक्ति नहीं रहती। परमात्मा में अस्पर्शनम अशिन्वानम अनास्वादम अदर्शनम अघ्राणम अवितर्कम ये चीजें होती हैं। वो स्पर्श से कान से नाक से जो जानने के साधन है उनसे परमात्मा का ज्ञान थोड़ा ही होता है। इसलिए जो सुख और दुख दोनों को छोड़ता है उसका नाम परमात्मा का अनुभव होता है। अनित्यम यौवनम रूपम, जवानी हरदम रहने वाली नहीं है, यौवन हरदम नहीं रहेगा, रूप हरदम नहीं रहेगा, जीवन हरदम नहीं रहेगा, द्रव्य संचय पैसे का इकट्ठा होना ये भी नहीं रहेगा, आरोग्यता हरदम नहीं रहेगी, प्रिय संवाद से अपने कुटुंबियों के साथ हरदम नहीं रहेंगे, ऐसा जो व्यक्ति समझता है वो पंडित है, समझदार है। न जानपदिकम दुखम, देखो जो सारे लोगों पर दुख आए उस दुख से ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अकाल पड़ गया साहब, अकाल पड़ गया और अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया पड़ गया, क्या करें, सबके ऊपर है। न जानपदिकम दुखम एक है शोचितुम अर्हसि, सारे जगह जो दुख व्यापक है उसके लिए अकेले को शोक नहीं करना चाहिए। तभी तक शोक करो यदि आप अकेले उस अकाल आदि को दूर कर सकते हो, तो वो तो कर नहीं सकते तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। इस संसार में गे रूप से एक परमात्मा ही है, इसलिए अपने अंतर्मुख में बुद्धि से निश्चय करो कि इस परमात्मा की प्राप्ति करनी है। बुद्धि का निश्चय होता है वो मन को वश में कर लेता है, बहुत अच्छी बात है। बुद्धि को वश में लोग नहीं करते और मन को करना चाहते हैं, तो मन को करने में, बुद्धि के बिना मन को करने में असंभव काम होगा। और एक अंत में और बात बताते हैं कि बुद्धि के द्वारा जब इन सब को काबू में कर लेते हैं तब उस परमात्मा का वैसे ही अनुभव होता है जैसे अनेक पदार्थों के अंदर एक सूत है। हाँ, जैसे माला है, एक लाल फूल है, एक पीला फूल है, एक सफेद फूल है, फिर एक लाल है, ऐसे कई वो है, और फूल ही फूल है उसके अंदर ये डोरा दिखाई नहीं देता है, लेकिन माला है तो अपन क्या कहते हैं, भाई अंदर डोरा तो है, सूत तो है, कहाँ है सूत, दिखता नहीं है। अरे माला कैसे बनी, नहीं तो ये माला कैसे हुई, बिना सूत के ठहरा कैसे है। तदेव च यथा सूत्रम सुवर्णे वर्तते पुनः मुक्त वसुत प्रवालेषु, मोती में भी वही है, प्रवाल में भी वही है, सोने में भी वही है, और कोई वहां पर ये दूसरी मणि माणिक के हीरा पन्ना उसमें भी छेद है, उसमें भी वही एक ही सूत है, एक ही सूत। ऐसे ही गाय में, गधे में, मनुष्य में, घोड़े में और पशु में, पक्षी में, हस्ती मृगादि इन सब के अंदर एक परमात्मा रहते हैं। इस बात को जो भूलते हैं और नाना प्रकार के कर्मों में उलझे रहते हैं वे तरह तरह के कर्मों का फल भोगते रहते हैं। देखो दिवा करो गुणम उपलभ्य निर्गुण है, यथा भवित अपगत रश्मि मंडल है तदा यसौ मुनिरिह निर्विशेषमान स निर्गुणम प्रविशति ब्रह्मचाव्ययम्। सूर्य भगवान जब किरण फैलाते तो सारे संसार के साथ संबंध होता है, और सायंकाल रात्रि में सब किरण समेट लेते हैं तो उनका किसी के साथ संबंध नहीं है। ऐसे ही मन इंद्रियां आदि के साथ संसार में फैलाव करोगे तो संसार से चिपक जाओगे, और सबके व्यवहार को समेट लोगे तो अविनाशी निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में स्थित हो जाओगे।
नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण।
मन नारायण नारायण नारायण
श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण
श्यावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले की आनंद कंद भगवान की अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की भक्तवत्सल भगवान की जय जय।